ஓம் சாந்தி. ஜுவாலாஸ்வரூப் யோகாபியாஸ் கே துவாரா சம்ஸ்கார் பரிவர்த்தன் கர்னா, வர்த்தமான சமய ஹம் சபி சத்யுகி விஷ்ணு வம்ச மே ஜானே கே லியே புருஷார்த் கர் ரஹே ஹேன். விஷ்ணு அர்த்தாத் விஷ்ணு அர்த்தாத் விகார் கா ஜோ விஷ் ஹே உஸ்கா அன்ஷ மாத்ர பி ஆத்மா மே நா ரஹே, அன்ஷ சே பி முக்தி அனுபவ கரே. ஐசி ஸ்திதி கே லியே ஹம் சபி புருஷார்த் கர் ரஹே ஹேன். உஸ்கே லியே ஹர் ரோஜ் ஜ்ஞான் ஔர் யோக் கி பாலனா பாபா ஹமே தேதே ஹேன். லேகின் ப்ராயா தேகா ஜாதா ஹேன் ஹர் ரோஜ் யோகாபியாஸ் கர்தே ஹுயே பி ஹமாரீ தின்சர்யா மே கிசி ந கிசி பிரகார் கே விகார் கே அன்ஷ ஹமே அனுபவ ஹோனே லக்தே ஹேன். அடோசி படோசியோ சே ஹமே கமெண்ட் மில்தா ஹே கி இத்தனே வர்ஷோ சே ஆப் ஞான மார்க் மே சல் ரஹே ஹேன் ஃபிர் பி ஆப்கோ ஃபீலிங் ஆதி ஹே. தோ இன் கமியோ கோ நிகாலனே கே லியே ஆவஷ்யக்தா ஹே ஜ்வாலா ஸ்வரூப் யோகாபியாஸ் கோ படானே கி. கியோகி சாதாரண யோகாபியாஸ் சே ஹமாரே ஜோ 63 ஜன்மோ கே கடே சம்ஸ்கார் ஹே வோ தோடே சே நரம் பி ஹோதே ஹே லேகின் மெல்ட் நை ஹோதே ஹே பிகல்தே நை ஹே. ஜேசே சோனே கோ அகர் பிகால்னா ஹே तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1064 डिग्री सेल्सियस. जब तक उस मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर नहीं पहुंचता है गोल्ड पिघलता नहीं है. ऐसे हमारे जो कड़े संस्कार हैं உனோக்கு ஜட் சே கத்தம் கரேக்கே ஆவசியக்தா ஹே ஜ்வாலா ஸ்வரூப் யோகாபியாஸ் கோ படானே கி. கியோகி பாபா கா இஷாரா பி ஹமே மில் ரஹா ஹே சமய சமாப்தி கி ஓர் தேஜீ சே பாக ரஹா ஹே. உஸ் சமய கி சமாப்தி கே பஹலே ஹமே இன் விகாரோ கே அன்ஷோ சோ கதம் கர்னா ஹே, அன்ஷோ சே முக்த ஹோனா ஹே ஔர் சாத் சாத் சக்தியோ கா ஸ்டாக் பி ஜமா கர்னா ஹே தாக்கி ஹம் அநேக ஆத்மாவோ கி சேவா பி கர் சகே. தோ யஹ காம் ஜ்வாலா ஸ்வரூப் யோகாபியாஸ் சே ஹி சம்பவ ஹோ சக்தா ஹே. अभी इस योगाभ्यास को ज्वालामुखी योग क्यों कहते हैं? जैसे धरती से ज्वाला फटती है उसमें जो लावा रस निकलता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसके कनेक्शन में कोई कठिन से कठिन चीज आ जाती है, लोहा कहो या पत्थर कहो, सेकंड में वो पिघल जाता है. तो ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास में योग की ज्वाला जब धधकने लगती है उसमें हमारे विकारों के अंश और वंश जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए पांच बातों पर हमें दिल से अभ्यास करते रहना जरूरी है। सबसे पहली बात है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए सारे दिन भर में स्वमानधारी होकर रहना जरूरी है, क्योंकि जब हम स्वमान के सिंहासन पर रहते हैं हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से खुशी से भरपूर होता है, और जब मन बुद्धि नशे से भरपूर होती है उस समय हमारे चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जिससे एकाग्रता योगाभ्यास में सहज अनुभव होती है। दूसरी बात, जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर हम अनुभव करने लगते हैं। इस साकारी दुनिया से पार अपने निराकारी आकारी दुनिया के तरफ स्वयं को अनुभव करते हैं, और मन का भटकना बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। इसलिए जब हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय खुशी से और नशे से भरपूर होता है तो योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव हमें होने लगते हैं, योग का मजा ही कुछ और ही होने लगता है। दूसरी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है परमात्मा के प्रति असीम प्यार दिल में होना, क्योंकि जिससे प्यार होता है उससे हमारी बुद्धि रूपी तार स्वतः ही जुड़ जाती है, और जितना प्यार होता है उतनी देर तक हमारी बुद्धि उनसे जुटी हुई रहती है। और प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो आत्मा और परमात्मा में जो इतनी लंबी दूरी है परमधाम निवासी परमात्मा को समीपता की अनुभूति कराता है। ये प्यार, प्यार से हम स्वयं को परमात्मा से कंबाइन अनुभव करते हैं। प्यार के सागर में जब समा जाते हैं तो प्रेम स्वरूप याद शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। अगर मैं जलता हुआ कोयला अपने हाथ पर पकड़ता हूं तो मेरा हाथ फट से जल जाता है। तो ये सिर्फ आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड हो जाती हैं, तो लव फुल स्थिति ज्वाला स्वरूप स्थिति में सहज ही परिवर्तन होने लगती है। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए रिश्ते नाते सभी से हमें निभाने हैं, लेकिन सच्चा प्यार दिल का प्यार केवल एक बाबा के साथ हमारा हो, क्योंकि परमात्मा केवल प्यार के सौदागर हैं। जितना जो उनसे प्यार करते हैं उतना वो आत्माओं से प्यार करते हैं, इसलिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे इसकी अनुभूति को बढ़ाते रहें। बाबा के साथ सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति भी करते रहे। तो जितना इस पुरानी दुनिया से वैराग हो जाता है, देहधारियों से, देह की दुनिया से वैराग हो जाता है, उतना परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार हमारा बढ़ने लगता है। इसलिए जो प्यारी चीज होती है वो हमारी आंखों में स्वतः ही बस जाती है। तो योगी आत्माओं के नैनों में परमात्मा नूर बनकर सदा बसे रहते हैं। इसलिए ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति भी वो सहज कर सकते हैं। तीसरी बात है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। बहुत गहराई की आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। जैसे आसमान में तारे हम स्पष्ट देखते हैं, वैसे मैं इस धरती पर चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूं। मैं सितारा अनेक बार परम धाम घर गया हूं और परम धाम रूपी घर से इस धरा पर पाड़ बजाने के लिए आया हूं। तो ऐसे निराकारी स्थिति का अनुभव जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे देह का भान, देह का ममत्व मिटता जाता है। तो एकदम विदेही स्थिति का अभ्यास हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात बाबा की जब याद में हम बैठते हैं तो केवल मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं समझना है, लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूं या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे शक्तिशाली स्वरूप में हमें बैठना है। तभी ज्ञान सूर्य परमात्मा से अथाह शक्तियां हम स्वयं में भरने लगते हैं। जैसे किसी बल्ब का वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है तो पावर हाउस से उसका कनेक्शन जुट जाता है, तो वोल्टेज जास्ती होने से वो बहुत इलेक्ट्रिक पावर अपने में खींचता है और बहुत दूर तक रोशनी देता है। तो ऐसे आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होना जरूरी है, तभी ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति हमें होती रहती है। जब भी हम अमृत वेले का योग करते हैं या नुमा शाम का योगाभ्यास करते हैं, उस समय ऐसी पावरफुल आत्मिक स्थिति की अनुभूति में ही हमें बैठना है। और आत्मा का अनुभव करते समय स्वमान के साथ उसका अनुभव करना है कि मैं महान आत्मा हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। इस स्वमान में जब हम स्थित होते हैं तो बहुत ही सुंदर योग की अनुभूति हमें होने लगती है। इसलिए बाबा के बच्चों ने ऐसी अशरीरी स्थिति का अनुभव बहुत अच्छी तरह से हर क्लब किया है, उसकी बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में बताते हैं कि पांडव जो हैं वो पहाड़ों पर चढ़ते गए, उनके साथ कुत्ता था, वो कुत्ता भी गायब हो गया। और जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते गए, गलते गए, और जैसे जैसे ऊंचे बढ़ते रहे, बाद में वो गायब हो गए। ये हम बच्चों की अभी की यादगार हैं। हम सभी प्रीत बुद्धि वाले पांडव बाबा के बच्चे अशरीरी स्थिति का अभ्यास जब करते हैं तो आत्मा की जो पूंछ है देह, वो भी गायब हो जाती है, वो भूल जाते हैं। और जैसे ऊंचाई पर चढ़ने लगते हैं तो आत्मा में जो 63 जन्मों का देह का भान है वो भी गलने लगता है। और जैसे और ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो गायब हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण बनकर परम धाम में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। ये हमारी यादगार अभी की है। इसलिए हमें बहुत सुंदर गहराई से आत्म अनुभूति को बढ़ाते जाना है। चौथी बात है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करते रहना जरूरी है। परम धाम में बाबा का स्वरूप हमें शक्तिशाली रूप में देखना है और अनुभव करना है कि बाबा तो बिंदु ही हैं, लेकिन वो शांति का सागर है, शक्ति का सागर है, प्रेम का सागर है और ज्ञान सूर्य भी है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। इतने वो शक्तिशाली हैं जो सारे संसार की आत्माओं को शक्तियों को प्रदान करते हैं और सारे संसार की रचना का ज्ञान उनके पास है। कहते हैं कि झाड़ का पत्ता भी जो हिलता है उसके इशारे के बिना नहीं हिलता है। तो ये स्थूल वृक्ष का पत्ता नहीं, हम जो आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते हैं वो भी उनके इशारे पर चलते हैं। जो हमें पाठ मिला है वही हमें बजाना पड़ता है। तो सारा संसार को चलाने वाली शक्ति कितनी अद्भुत शक्ति होगी, ऐसा बाबा का शक्तिशाली स्वरूप हमें परम धाम में बहुत समीपता से अनुभव करना है, देखना भी है और अनुभव भी करना है। क्योंकि बाबा एक बार मधुबन में मुरली चला रहे थे, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर बाबा के सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। मुरली चलाते समय, बीच में ही मुरली चलाते समय कहती है बच्ची, बाबा मैं आपको प्रश्न पूछूं। हाँ पूछो। अभी आप मधुबन में ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मुरली चला रहे हैं, क्या इसका मतलब परम धाम में आप नहीं हैं? क्या इसका मतलब परम धाम अभी खाली है? ऐसा प्रश्न उसने बाबा को पूछा। तो कहने का मतलब है, बाबा तीनों लोकों में कहीं पर भी होंगे तो भी उनकी शक्तियां निरंतर प्रवाहित रहती हैं, और जहां पर भी हम आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं उनकी शक्तियों को अनुभव करने लगते हैं। इतनी वो शक्तिशाली हस्ती हैं, दुनिया की सर्वोच्च सत्ता हैं। तो उस सत्ता को हमें बहुत गहराई से देखना है और उनके शक्तिशाली स्वरूप को भी अनुभव करना है। आप सोचो, बहुत गर्मी के जब दिन होते हैं, हम इस सूर्य की रोशनी में दो घड़ी के लिए खड़े होते हैं तो हम कहने लगते हैं मेरा बदन जल रहा है। जलने के शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इस सूर्य की रोशनी इतनी प्रखर है जो हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं। ये स्थूल सूर्य की बात है और इसको क्रिएट करने वाला ज्ञान सूर्य कितना शक्तिशाली होगा इस पर आप सोच सकते हैं। कहने का भाव है बाबा का स्वरूप हमें बहुत प्रखर ज्ञान सूर्य के रूप में परम धाम में अनुभव करते जाना है, तभी ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति हमें होती रहेगी। और पांचवी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति को बढ़ाने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ हमें अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास में बैठना है। दृढ़ता की परछाई है सफलता। जब भी हम योगाभ्यास के लिए बैठते हैं पूरी दृढ़ता से बैठना है। आज मुझे किसी भी हालत में ऐसी शक्तिशाली स्वरूप की अनुभूति योग की करना ही है। तो ऐसी दृढ़ता से हम जब बैठते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। ये कहावत क्यों प्रसिद्ध है? दृढ़ता की परछाई है सफलता, क्योंकि जिस कार्य के लिए हमारी दृढ़ता होती है उस कार्य के पीछे हम जो अमूल्य खजाने हैं समय का और संकल्प का खजाना उसके पीछे लगा देते हैं और उसमें हमें मन चाही सफलता मिलती है। इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ हमें योगाभ्यास में बैठना है तो ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति होकर रहेगी और उसके साथ पूरी एकाग्रता योगाभ्यास में होना जरूरी है। ये ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास का सीक्रेट है। संपूर्ण एकाग्रता के साथ हमें योगाभ्यास करना है। उदाहरण बहुत स्पष्ट है, इस सूर्य में बहुत शक्तियां होती हैं स्थूल सूर्य में, लेकिन वो कागज का टुकड़ा डायरेक्ट उसके प्रकाश में जला नहीं सकता है। कागज के टुकड़े को जलाना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग लेंस का आधार लेना पड़ता है और जब हम उस मैग्नीफाइंग लेंस को सूर्य की रोशनी में कागज के टुकड़े पर उसको पकड़ते हैं तो सूर्य की किरणें उससे पास होती है और जब वो पास होती है तो लेजर किरणें की तरह अर्थात शक्तिशाली किरणें वो बनती हैं और ऐसी शक्तिशाली किरणें जब कागज पर एक बिंदु पर एकाग्र होती है केंद्रित होती है तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि का रूप लेती है और उसमें पेपर सेकंड में जल जाता है। ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने के लिए हमें बुद्धि रूपी नेत्र से, स्थूल नेत्रों की इसमें बात नहीं, बुद्धि रूपी नेत्र से ज्ञान सूर्य परमात्मा को पूरी एकाग्रता से देखना है। तो बुद्धि रूपी लेंस से जब ज्ञान सूर्य की किरणें शक्तियों की किरणें पास होती हैं तो बहुत ही शक्तिशाली लेजर किरणें वो बनती हैं और ऐसी शक्तिशाली किरणें आत्मा पर पूरी एकाग्रता से पड़ती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और योग की ज्वाला धधकने लगती है और उस योग की ज्वाला में हमारे पुराने कड़े संस्कार, हमारे कई जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं और आत्मा एकदम हल्की फुल्की स्वयं को अनुभव करने लगती है। तो ऐसी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। मुझे याद है हम मधुबन निवासी 87 में पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में बाप दादा से मिल रहे थे, तो बाबा से प्रश्न पूछा था कि बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, वो कैसे समझे, शक्तिशाली योग की निशानियां क्या होती हैं? तो बाबा ने स्पष्ट बताया था शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। उसकी एक निशानी है शक्तिशाली योगाभ्यास में योग अग्नि के रूप में हमें अनुभव होता है, उस अग्नि में हमारे विकर्म भस्म होते हैं ऐसा एहसास हमें होता है, और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि विकर्मों का बोझा धीरे धीरे घटने लगता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होने लगती है? क्योंकि हम अपने संपूर्णता के मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए हमें खुशी की अनुभूति होती है। तो ऐसे दोनों प्रकार की अनुभूतियां हमें शक्तिशाली योगाभ्यास में जरूर होती हैं। आप कहेंगे ऐसी एकाग्रता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है। हम बाबा के बच्चों ने ही ऐसी एकाग्रता के साथ योगाभ्यास किया हुआ है, उसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में बताते हैं। जब अर्जुन और सहपाठियों को गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो धनुर्विद्या सिखाने के बाद उनकी एक दिन उनकी परीक्षा लेना चाहे, तो गुरुजी ने क्या किया, एक वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया कि पंछी की आंख में जो काली पुतली है उस पर आपको तीर मारना है। तो सहपाठियों को बुलाया, आपको क्या दिखाई देता है? हाँ, पंछी भी दिखाई देता है, आंख भी दिखाई देता है और डाल भी दिखाई देती है। फिर बाद में अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आओ, आपको क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल और केवल वो पंछी की आंख में जो काली पुतली है वही मुझे दिखाई दे रही है। फिर उसको कहा तीर मारो, उसने तीर भेदा और पांच वित आनर हो गया। तो कोई अर्जुन वर्जुन होकर नहीं गया है, ये सारे अर्जुन इस सभा में बैठे हैं, ये बाबा के लाल जो हैं अर्जुन बैठे हैं। हम बाबा के बच्चों ने ही ऐसी सुंदर योग की अनुभूति हर क्लब की है। ये केवल ब्रह्मा बाबा की ही यादगार नहीं है, ब्रह्मा बाबा के साथ हम बच्चों की भी यादगार उसमें बताई जाती है। इसलिए हमें पूरी आत्मविश्वास के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ ऐसा योग का अभ्यास करते जाना है, तो धीरे धीरे हमारे विकारों के जो अंश हैं वो खत्म होते जाते हैं और हम स्वयं को बहुत हल्के फुल्के अनुभव करते हैं। अभी मेरे आत्मा में विकारों के अंश है या नहीं, अगर है तो कहां तक है, ये अगर चेक करना है तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं, अगर कभी कभी अपवित्र संकल्प चलते हैं, किसी भी विकार से संबंधित संकल्प चलते हैं, तो समझ लो अभी भी उन विकारों का अंश मुझ आत्मा में है, ये हमें पता चलता है। और दूसरा तरीका है, जो हमें स्वप्न पड़ते हैं किसी भी विकार से संबंधित, अगर हमें स्वप्न पड़ता है तो समझ लो उस विकार का अंश मुझ आत्मा में अभी भी है। तो स्वप्न पड़ते हैं लेकिन सपनों में भी सतो प्रधानता अनुभव होने लगती है। संगम युग के बारे में, सेवा के बारे में, बाबा के बारे में हमें स्वप्न पड़ने लगते हैं। तो इन दो बातों से हमें चेक करना है कि कितनी विकारों की खाद मुझ आत्मा में अभी भी बाकी है, तो उस अनुसार हमें पुरुषार्थ को तेजी से आगे बढ़ाते जाना है, क्योंकि हमें घर वापस जाना है बेदाग हीरा बनकर। कोई भी विकार के अंश का दाग जो मुझ आत्मा की वैल्यू को घटा दे, वो दाग मुझ आत्मा पर ना हो, उसको किसी भी हालत में मुझे मिटाना है, ये दृढ़ संकल्प लेकर ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करते रहना है। वास्तव में विकारों के लिए हम बहुत सोचते हैं, कभी कभी विकारों पर जीत न मिलने से दिल शिकस्त भी होते हैं। तो हमें ये जानना है कि विकार आखिर क्या चीज है। जैसे अंधकार कोई चीज नहीं होती है, अंधकार केवल प्रकाश का अभाव होता है, ऐसे पांचों विकार का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन पांचों विकार विशेष पांच दिव्य गुणों के अभाव से आत्मा में प्रवेश होते हैं। जैसे काम विकार पवित्रता के दिव्य गुण का अभाव कहलाता है। जब पवित्रता की लाइट धीरे धीरे सतयुग त्रेता युग में डल हो जाती है, तो द्वापर युग में काम का अंधकार उस पर छा जाता है। और क्रोध जो विकार है, वो शीतलता का जो दिव्य गुण है, उस दिव्य गुण का अभाव है क्रोध का अंधकार। तीसरा विकार है काम क्रोध लोभ, ये संतुष्टता का जो दिव्य गुण है, उसका अभाव से लोभ विकार आत्मा में आता है। चौथा विकार है मोह, सबके साथ समान प्यार होना, ये दिव्य गुण है, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं। प्रेम स्वरूप व्यवहार सभी के साथ होना, ये स्वाभाविक हमारा नेचर है, लेकिन किसी के साथ विशेष स्नेह होना, उसको मोह कहेंगे। तो इस दिव्य गुण के अभाव से ये मोह आत्मा में आ जाता है। तो हमें सबके साथ समान प्यार होना, ये दिव्य गुण को बढ़ाते जाना है। और अहंकार जो अपना विकार है, वो है नम्रता के दिव्य गुण का अभाव। जब नम्रता का दिव्य गुण धीरे धीरे डल होने लगता है, उसके बाद अहंकार आत्मा में प्रवेश होने लगता है। तो कहने का भाव है, समय थोड़ा है, तेजी से
प्रभु का।
से तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें एक तरफ ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाते रहना है और दूसरे तरफ इन विशेष पांच दिव्य गुणों को जीवन में धारण करते रहना जरूरी है, तो हमारा प्रोग्रेस डबल होता जाएगा और हम तेजी से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं, कोई भी उठे नहीं, बहुत ही आपको मजा आएगा, क्योंकि बाबा का इशारा है अभी समय के अनुसार अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है बहुत सुंदर और गहन योगाभ्यास के अनुभव अपने जीवन में करना। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो, क्योंकि इस ब्राह्मण संसार में सबसे धनी आत्माएं वो हैं जिनके पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत होता है। तो इसलिए योगाभ्यास के क्षेत्र में हमारे पास बहुत सुंदर और गहन अनुभव बढ़ते रहे, यही ताज सदा लगी रहे, क्योंकि अनुभवी आत्माओं को विशेष तीन लाभ होते हैं। पहला लाभ, अनुभवी आत्माएं आगे आने वाले समय में भी अपने स्थिति को अचल रखने में सफल होंगे। दूसरा लाभ है, अपने स्थिति को अचल रखते हुए भी अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता उनके पास होगी। और तीसरा लाभ है, परमात्मा निराकार है, गुप्त है, परमात्मा की शक्तियां भी गुप्त हैं, तो परमात्मा की प्रत्यक्षता ऐसे अनुभवी योगी आत्माओं के द्वारा इस संसार में होगी। तो परमात्म प्रत्यक्षता के महान कार्य में उनकी विशेष भूमिका होगी, ये तीसरा लाभ उनको होता है। इसलिए मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत अच्छी तरह से बढ़ता रहे, यही तात सदा लगी रहे। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद कोई भी अलौकिक अनुभव करना है तो दो बातों की आवश्यकता है। पहली बात, अनुभव। अनु अर्थात स्वयं को अति सूक्ष्म बिंदु समझना। जब हम स्वयं को अणु समझते हैं, बिंदु समझते हैं, सितारा समझते हैं, तो अलौकिक अनुभव की खान हमें मिल जाती है। और दूसरी आवश्यक बात है, अनुभव करने के लिए बुद्धि और मन में जो सूक्ष्म अंतर है वो जानना बहुत जरूरी है। आत्मा का भी अनुभव हमें करना है तो बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को देखना जरूरी है, उसके बाद उसमें स्थित होते हैं तो आत्मा की अनुभूति हमें होने लगती है। तो बुद्धि कौन सी शक्ति है, मन कौन सा शक्ति है, ये क्लियर अंतर हमारे पास होना जरूरी है। मान लीजिए मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, आपने मधुबन में शांति स्तंभ देखा है, पूछते ही शांति स्तंभ की तस्वीर आपके सामने आ जाती है, वो देखने वाली शक्ति है बुद्धि रूपी नेत्र। और शांति स्तंभ के बारे में अगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कैसा शांति स्तंभ है, तो उसके बारे में आप सोच सोच के बातें बताएंगे, ज्ञान का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, शांति का स्तंभ, ऐसे ब्रह्मा बाबा की वो स्थिति की यादगार हैं, तो सोचने वाली शक्ति है मन। तो एकांत में बैठकर इन दोनों शक्तियों को हमें फील करना है, अनुभव करना है, उसके बाद ही बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव हमें इस ज्ञान मार्ग में होते हैं। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। सभी थोड़ा अलर्ट होकर बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों बहुत सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्म ज्योति से चारों ओर फैल रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति देह से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती भी जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों का शहंशाह प्यारा ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे अति प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझे अति शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं, नजर से निहाल कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूँ। कितना सुंदर है यह दिव्य ज्योति धाम, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण नाथ, मेरे प्राण पिता सत्यम शिवम सुंदरम शिव पिता, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ। बाबा की सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शुपिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। और योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। यज्ञ की प्रखर अग्नि में पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे सुखद पल है यह, सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर महाज्योति शिव पिता के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे मैं, वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म ज्योति खोई रहूं, समाई रहूं। प्यार के सागर के कंपनी में परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति करती रहूं। ज्ञान सूर्य से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूँ, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस शरीर रूपी मंदिर में पुनः मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ। मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रही हैं। इस वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। मुझ बेदाग मस्तक मणि से अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही हैं। अष्ट शक्तियों की किरणें इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा से डायरेक्ट परम धाम से शक्तियों की सकांस मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है। दिल कहता है इसी सुंदर अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं। मुझ आत्मा के चहु ओर बहुत सुंदर आत्मा का प्रकाश दिव्यता का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। ओम शांति शांति।